खुजुहूसी न तो वाला नाम, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कमजोरी वाली चीजें हैं उनकी नफी भी की गई। जैसे अगर मसलन कहा जाए फलां सेहतमंद है, तो इतना काफी नहीं है, इसलिए कि आज वो सेहतमंद है ना, हो सकता है कल बीमार पड़ जाए। लेकिन अगर ये कहा जाए फलां सेहतमंद है और वो कभी बीमार नहीं होता, तो फिर पता चल गया कि अच्छा कभी भी नहीं बीमार होगा, इसकी सेहत बिल्कुल ठीक वाली सेहत है। तो यहाँ पे हई और कयूम बता दिया गया, अल्लाह ताला मौत से तो पाक है, मौत तो दूर की बात, वो तो ऊंग से भी पाक है। अल्लाह तहुजुहु सीना, तो सीना से भी पाक है। सीना जो होती है वो मौत का समझ ले एक स्टार्ट है, पहले सीना होती है फिर उसके बाद नींद का स्टार्ट है, पहले ऊंग होती है फिर उसके बाद नींद आती है। तो इंसान को देखा जाए तो उसकी हयात कैसी है, जिसमें अगर वो सोए ना तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता था। कई क्रिमिनल्स को राज उगलवाने के लिए वो क्या करते हैं, उसको जगाए रखते हैं और फिर वो राज बता देता है सारे, क्योंकि वो कहता है कि अब इसके बाद, क्योंकि उसको उसकी ये एक ऐसी जरूरत है जैसे खाना और पीना जरूरत है, इस तरह उसकी जरूरत है। तो अल्लाह ताला वो जात है जो ऊंग से भी पाक है, उसको ऊंग भी तारी नहीं होती, नींद तो बाद की बात है और मौत तो उससे भी आगे की चीज है। आपको पता है ना, मौत को, नींद को कहा गया मौत की बहन है, क्योंकि नींद में भी इंसान कुछ गफलत में चला जाता है। तो अल्लाह ताला नींद से पाक, क्योंकि वो गफलत, वो अगर वो गाफिल हो जाए तो उसकी मखलूक कैसे चलेगी। देखिए जिसको कोई खुदा मानता है अगर वही गाफिल हो जाए, तो अब जी उसके जो मानने वाले हैं वो रोते पीटते रहे, उनको कोई मसला हो जाए, उनको कोई कुछ होगा, वो जी सोया पड़ा है। जो लोग इंसानों के ऊपर उम्मीदें बांधते हैं और इंसानों के पास ही अपनी हाजतें लेकर जाते हैं, फिर यही होता है ना कि फिर वो इंसानों के पास जाते हैं, जी अभी साहब सो रहे हैं, अभी तो वो छुट्टियों पे गए हैं, अभी तो उनके जो है ना मतलब कोई काम है, उनके आराम का वक्त है, उनके फलां का वक्त है, उनके खाने का वक्त है उनके, तो उनको भी अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। अल्लाह ताला तो नींद से पाक है और गफलत से पाक है। हदीस में आता है ना, बेशक अल्लाह ताला सोता नहीं है और ना ही उसकी शान के लायक है कि वो सोए। सुभान अल्लाह। और इंसानों में जैसे मैंने आपसे कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में एक दफा आता है कि वो कतादा कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था सफर में, रात का वक्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे बैठे हुए थे, सवारी चल रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंघने लगे और सवारी से ऐसे एक जानिब झुक गए, तो मैंने आपको सहारा दिया और ठीक किया और बराबर कर दिया। कुछ देर बाद फिर मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे ऊंघ रहे हैं और एक तरफ को ढलक रहे हैं, मैं फिर गया और आपको हाथ लगाया और सहारा देकर सीधा किया। तीसरी दफा जब मैंने किया नींद की शिद्दत से, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ झुके हैं तो मैंने सहारा दिया तो आपकी आंख खुल गई। आपने पूछा कौन है, बताया अबू कदादा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सारे इंसानों से ऊपर है, सारे इंसानों में कामिल इंसान है, वो भी ऊंघ और नींद से पाक नहीं है, उनको भी सोने की जरूरत होती थी। जब सहाबा ने कहा था, एक ने कहा था कि मैं सारी रात इबादत करूंगा सोऊंगा नहीं, तो आपसे सरम ने क्या फरमाया था कि मैं सोता भी हूं इबादत भी करता हूं, रोजा रखता भी हूं नहीं भी रखता, बीवियों से भी मिलता हूं। ये इंसानों की ये मोहताजी है, एंड ऑफ द डे चाहे कोई पैगंबर हो वो इंसान ही है, वो खुदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, रात को एक जगह पड़ाव फरमाया, साहबा से पूछा कौन है जो हमारे लिए पहरा देगा और फिर फजर पे हमें उठ जगाएगा, तो हजरत बिलाल ने फरमाया कि ठीक है मैं करता हूँ। अब जब सारे सो गए उन्होंने टेक लगाई, उनको भी नींद आ गई, जब सारे उठे तो देखा तो सूरज भी निकल आया हुआ था, फजर भी गुजर गई थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला उनसे पूछा तो फरमाया कि मुझे भी उसने ही सुला दिया जिसने बाकियों को सुला दिया। देखिए अल्लाह ताला की जात है जो एक लम्हे के लिए भी सोता नहीं है, हमेशा से है। क्योंकि देखिए सोना क्या है, सोता कब है इंसान, जब वो थक जाता है, उसको थकन है ही नहीं तो वो सोएगा क्यों, उसके पास थकन ही नहीं है, कोई थकन के आसार नहीं उसको होते। वो आसमानो जमीन की पैदाइश करने के बाद भी वमा मस्साना मिन लुगूब, अल्लाह ताला ने सूरह काफ में फरमाया कि इसको थकावट छुई भी नहीं। ये जो अल्लाह माफ करे कहते हैं कि होली डे है कि 6 दिन में अल्लाह ताला ने, नौज बेला 6 दिन में अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात को पैदा किया और 7वें दिन उसने आराम किया, तो 7वें दिन हम भी छुट्टी करते हैं। अल्लाह माफी दे, अल्लाह ताला को तो थकावट से पाक है वो, और थकावट नहीं है तो नींद भी नहीं है। देखें जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो वो भी नहीं सोएंगे, वहां पे कोई थकावट नहीं होगी। बाकी जो है उनको थकन भी है, नींद भी है, वो मौत भी है, फिर तो फिर क्यों ना तवक्कल उस पे करें, अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, उस जिंदा पे जिसको मौत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहां पर नींद की भी और ऊंग की भी नफी फरमा दी कि अल्लाह ताला की जात इन दोनों चीजों से पाक है, और ये दोनों ही इसका मतलब कमजोरियां हैं। और पहले क्या बताया था, अल्लाह ताला ने हई और कयूम बताया, जो एब्सोल्यूट वो क्वालिटीज हैं जो किसी और की नहीं हो सकती, किसी इंसान के अंदर नहीं पाई जा सकती। लेकिन अब इसके बाद नफी फरमा दी उस चीज से जो कि अल्लाह ताला के करीब भी नहीं हो सकती, और वो है नींद और ऊंग। के ना जब ये चीजें होती हैं ना, देखिए हम बैठे बैठे भी सो जाते हैं, क्लास में भी सो जाते हैं, इसका मतलब इंसान का इख्तियार ही नहीं रहता ना, उसको पता ही नहीं चलता। मस्जिद में बैठे बैठे लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि ये घेर लेती हैं, ऐसी गालिब आती हैं। कई दफा लोग रमजान में कहते हैं पता ही नहीं चला, हम तो आकरात में जागे, पता ही नहीं चला किस वक्त नींद ऐसी आई कि कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो गए। तो इसका मतलब ये गालिब आ जाती है ना, वो कैसे इलाह हो सकता है जिसपे कोई चीज गालिब आ जाए? अल्लाह ताला पे तो कोई चीज गालिब आ ही नहीं सकती। अब लाओ तो फिर लाओ, लेकर आओ लिस्ट अपनी, जिन 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 को भी लोग पूछते हैं, लेकर आओ लिस्ट और इस क्राइटेरिया पे रखो। क्या वो कभी नहीं सोए? क्या कभी उनको ऊंघ भी नहीं आई? सोचे अगर मसलों को हल करने वाला ही सो गया, गाफिल हो गया, उसकी मखलूक का फिर हाल क्या होगा? हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा खड़े होकर सहाबा कराम को 4 बातें बताई। फरमाया अल्लाह ताला सोता नहीं है, ना नींद उसकी जात के लायक है, वो तराजू का मुहाफिज है, जिसके लिए चाहे झुका दे, जिसके लिए चाहे ना झुका। दिन के अमाल रात से पहले और रात के अमाल दिन से पहले उसकी तरफ ले जाए जाते हैं, उसके सामने नूर या आग के पर्दे हैं, अगर वो हट जाए तो उसके चेहरे की तजल्लियां उन तमाम चीजों को जला दें जिन तक उसकी निगाह पहुंचे। उसकी निगाह कहाँ तक पहुंचती है? उसकी निगाह की तो कोई इंतहा नहीं है ना, तो यानी हर चीज जल जाए, उसके आगे पर्दे हैं, हिजाब है उसके आगे, अगर ये हिजाब हट जाए तो उसकी मखलूक ताब नहीं ला सकती उसकी। अल्लाहु अकबर। तो वो ऐसा है कि कभी सोता नहीं है, इसीलिए आप आधी रात को पुकारें, आप छुट्टी के दिन पुकारें उसको, ईद के दिन पुकार लें, वीकडे में पुकारें, वीकेंड पे पुकारें, तूफानों में पुकारें या खुशियों में पुकारें, किसी वक्त भी पुकारें। और अगर उसको ऊंग आती होती तो क्या होता? वो संभाल सकता था क्या ये कायनात को? कायनात चल सकती थी क्या? इसी से पता चलता है कि उसको नींद और ऊंग नहीं है। ये देखें दुनिया में कायनात में कितनी हार्मनी है। फिर आगे फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध। इसका तर्जुमा हम ये नहीं कहेंगे उसके लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन। लहू जब शुरू में आ गया ना, तो मैंने आपको क्या बताया, एक्सक्लूसिव हो गया, फिर हसर का माना आ गया, उसी के लिए है, यानी किसी और के लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है जो आसमानों में और जमीन में। क्या मतलब? यानी इन जो कुछ आसमानों में जो कुछ जमीन है उसको पैदा करने वाला भी वही है, उन उसके ऊपर हुकूमत इख्तियार भी उसका है, वो ही बादशाह है, उसकी चलती है उनके मामले में, उनके बारे में फैसले करने वाला भी वही है, वइलैही तुरजउल उमूर। यानी कोई चीज उसके मुल्क से बाहर है ही नहीं, इसका मतलब। उसकी मिल्कियत से बाहर नहीं, उसकी बादशाहत से बाहर नहीं। तो इला बनने का हकदार तो वही हुआ ना कि एक जर्रा भी कायनात में किसी और की मिल्कियत ना हो, उसकी ही हो। यहां पे क्या दिया, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ध। तो सिवाय अल्लाह ताला के तो और कोई भी नहीं है ऐसा जो ये कह सके कि सारा कुछ ही जी इसका ही है। इसके अंदर आप ये बात याद रखें, तीन चीजें तबरानी ने लिखा है कि अल्लाह ताला के लिए खल्क है, यानी पैदा उसने किया, उसी के लिए मुल्क है यानी किंगडम उसकी है, और उसी के सब गुलाम हैं, जितने कोई भी है ना आसमान और जमीन है सब उसके गुलाम हैं, बादशाहत भी उसकी चलती है। यानी एक तो हो सकता था ना कि क्रिएट कर दिया, पैदा कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया, वो अपने खुद ही गिरते पड़ते मरते फिर रहे हैं, जो मर्जी उनका होता रहे। नहीं, वो उनके ऊपर बादशाहत भी रखता है, इख्तियार भी रखता है, उनके मामलात को भी चलाता है। और ये भी नहीं है कि चलो थोड़ी जगह उसकी मिल्कियत हो गई, थोड़ी किसी और की भी हो गई, नहीं, उसी का है, सिर्फ उसी का। आप बताएं कोई ये दावा कर सकता है कि उसी का है सातों आसमान और जमीन भी, सब उसकी है और सब जगह उसका हुक्म चल रहा है। अब इस क्राइटेरिया पे भी कोई और पूरा नहीं उतर सकता, इसीलिए तो अल्लाह ताला इला है। ये देखें, ये सपोर्टिंग एविडेंस है इस चीज की, ला इलाहा इल्ला हुआ की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ की, ये सपोर्ट कर रही है ये सारी चीजें। वो ही क्यों इला होना चाहिए, कोई और उसके सिवा क्यों नहीं, क्योंकि सब चीज उसी की तो है, उसी की मिल्कियत है, उसी की तखलीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि आसमान और जमीन का कोई जर्रा भी उसकी मुमलिकत से बाहर नहीं है। और ये कितनी बड़ी बात है फिर जो कहे कि मैं उसका गुलाम हूं जो जिसका सब कुछ है आसमान और जमीन, कितनी बड़ी बात है फिर। इसीलिए किसी ने कहा ना कि मैं इस पे नहीं फख्र करता कि मैं क्या हूं, मैं इस पे गौर करता हूँ कि देखो तो सही मैं गुलाम किसका हूं, वो जात कितनी अजीम है। फिर उसको छोड़ के इंसानों से जाके भीख मांगना, उनको खुश करने की कोशिश करना, ये हमारे काम बना देंगे, उनके आगे माथे टेकना, सजदे करना, उनके हाथ में क्या है? क्या वो भी कह सकते हैं कि वो किसी चीज के मालिक हैं? वो तो अपनी जात के भी मालिक ना थे, इसीलिए तो जाके मौत आई तो जाके जमीन के नीचे पड़े में आज अपने आप को उठा तक नहीं सकते, अपने आप को जिंदगी नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने तो इंसान को इज्जत दी है, तू किसी और का भी ना बन, बस मेरा बन। और इंसान अपने आप को जलील करता है जब अपने जैसों के आगे झुकने लगता है, उनके आगे हाथ बांधता है। अब जिसकी मिल्कियत है, जिसका सब कुछ है आसमान और जमीन में, मुझे बताएं फिर वो जो चाहे करे, आसमान में करे, जमीन में करे, जो चाहे करे, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, जिससे चाहे छीन ले, जिससे चाहे अता करे, कुछ भी करे ना, जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे जिंदगी दे, फिर तो सारा कुछ उसकी हुकूमत जब उसकी है, बादशाहत उसकी है, मिल्कियत उसकी है, ये मखलूक उसकी है, तो जो मर्जी वो करे। तो फिर उसको छोड़ के हम, जिसके सारे हाथ में सारा कंट्रोल है, उसको छोड़ के किसी और के पास जाएं कि मुझे खुशियां चाहिए, इज्जतें चाहिए, शिफा चाहिए, फलां चाहिए, वो कहते हैं अन्ना हुआ अधहका व अबका व अन्ना हुआ अमात व अहया, वो ये जो हंसाता है, वो ये जो रुलाता है, वो ये जो जिंदा करता है, वो ये जो मौत देता है। अलम ताला अल्लाह मुल्कु समावाति वल अर्ध, तुम्हें नहीं पता अल्लाह ताला की बादशाहत है आसमान और जमीन में? यूलिजु लैला फिन नहार और यूलिजु नहार फिन लैल, दिन और रात को तो वही निकालता है, उसकी चलती है इस कायनात में, किसी और की नहीं चलती। मालिक भी वो है और मलिक भी वो है, मलिक किसको कहते हैं, बादशाह को, मलिक भी वही है और बादशाह ही फैसले करता है ना, तो फैसले तो वो करने वाला है। तुम क्या किसी और के पास जाके मांग रहे हो कि मुझे ये दे दो, जब ये फैसला देने का तो उसने करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा रब है, उसके सिवा तो जिनको तुम वो लोग पुकारते हैं वो कितमीर के भी मालिक नहीं। कितमीर क्या, खजूर की गुठली के अंदर सफेद सी झिल्ली होती है ना, वो उतनी सी चीज के भी नहीं मालिक। इतने फकीर हैं जिनको भी पुकारा जाता है, वो बाबा जी, वो दाता, वो पीर साहब, वो गौसे आजम, वो फलां, औलिया की ताजीम जरूर करें, लेकिन उनके हाथ में कुछ समझना कि इनके हाथ में मेरे फायदे हैं, ये शिर्क है। वो तो अल्लाह ताला से डरने वाले थे और आज लोग जाके उनके दरगाहों पे सजदे कर रहे हैं। जो नजर व न्याज अल्लाह ताला के लिए करनी चाहिए वो उनके नाम की कर रहे हैं, वहां धागे बांध रहे हैं। क्या मिलेगा इससे? उनके पास तो कितमीर भी नहीं है, वो क्या दे सकते हैं तुमको? वो तो मिसकाला जर्रा के भी मालिक नहीं है। मंजल्लजी यशफा इंदहू इल्ला बे इज़्ने, कौन है जो शिफात करे मगर उस साथ उसके इज़्न के? शिफात बरहक है, शिफात होगी मगर जिसके लिए अल्लाह ताला इज़्न दे। नंबर वन, जिसके लिए, यानी एक है औलिया अल्लाह में से जो किसी शख्स के लिए शिफात करना चाहते हैं, लेकिन जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा वो शिफात नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब अल्लाह ताला की इजाजत चाहिए, इल्ला भी इतने। नंबर टू, अल्लाह ताला ने फरमाया कम में मलकिन बिस्समावाती ला युगनी शफातुहुम शैअन इल्ला मिन बादी अन याज़न अल्लाहु लिमन यशाउ व यरदा। सूरह नजम में कितने ही हैं फरिश्ते आसमानों में, उनकी शिफात कोई काम काम नहीं देगी मगर अल्लाह के इज़न से, जिसके लिए वो चाहे और जिससे राजी हो। यानी जो फिर आप शिफात करने वाला है उससे भी अल्लाह ताला राजी हो, वो वाकई अल्लाह का वली है, और जिसके लिए की जा रही है उससे भी राजी हो। तो ये तीन चीजें हैं शिफात के लिए जरूरी। और याद रखें अल्लाह ताला वो नहीं है कि किसी से मजबूर हो जाए कि अच्छा इसकी मोहब्बत में मजबूर हो गया तो अब इस इसके लिए सिर्फ मसन है कि कोई कहते, कोई लोग अकीदा रखते हैं कि वो तो अल्लाह ताला से करवा ही लेंगे, जब बाबा जी कहेंगे तो ये तो अल्लाह ताला के इतने पहुंचे में अल्लाह ने इनकी थोड़ी टालनी है। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला भी इतनी मगर जिसके लिए अल्लाह इज़न दे, वो किसी की मोहब्बत में मजबूर नहीं होता, वो किसी की सिफारिश को ऐसे नहीं जैसे दुनिया में सिफारिश होती है, वो कोई किसी की भी चोर डाकू की सिफारिश करने के लिए आ जाएगा तो जी आए अब क्या करें, हम हमारे हमें भी कल को इनसे काम पड़ेगा, अब ये सिफारिश लेकर आए हैं तो चलो इस चोर डाकू को छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला को किसी से काम नहीं पड़ना, सब उसके मोहताज हैं, सब उसके गुलाम हैं, वो किसी से मजबूर नहीं होता, ना किसी की मोहब्बत में और ना ही किसी का जोर है उसके ऊपर। अल्लाह ताला शिफात की इजाजत देगा मगर जिसके लिए वो चाहेगा। अब वो किसके लिए चाहता है ये हम किसी का डेफिनेट नहीं कह सकते कि किसको वो चाहेगा। वहां पे तो ये हाल होगा ला यतकल्लमुना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, वहां पे तो कोई बात भी नहीं कर सकेगा मगर जिसको रहमान इज़न दे बोलने का, बोल भी नहीं सकेंगे, शिफात करना तो दूर की बात है। वकाला सवाबा, और वो बिल्कुल सीधी सीधी बात करेगा, इसकी जरूरत होगी वहां पे दादागिरी करने की, वहां पे अकड़ने की, वहां पे जिद करने की, मैंने तो इसको छुड़ाना ही है, ये तो मेरे मुरीद है। वो कहते हैं वो तो मुरीदों के बगैर जाएंगे ही नहीं, उन्होंने तो मुरीदों को लेके ही जाना साथ। ये कहां से सीखा आपने? कोई वहां पे क्या जरूरत से बोल सकेगा, वो तो एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाल सकेंगे, नफसी नफसी की पुकार होगी। और जिस वक्त अल्लाह ताला इजाजत देगा तब भी वो सबसे पहले शिफात-ए कुबरा है, जिसके अंदर आपने वो हदीस सुनी होगी कि हशर के मैदान में लोग इतने सालों परेशान खड़े में है, अल्लाह हु अकबर, सूरज करीब है, तकलीफ में मुबतला है, इतनी सख्ती है, इतनी सख्ती है, लोग कहते हैं हाय क्या करें, किसी तरह हमारे लिए कोई सिफारिश ही कर दे, कितना सख्त वक्त है हमारे ऊपर। तो चलो अब चलते हैं हम जाके किसी पैगंबर से कहते हैं कोई सिफारिश करे कि अल्लाह हमारा तो फैसला तो शुरू कर। तो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैंने तो आज जितना अल्लाह ताला आज गुस्से में है इससे पहले कभी नहीं था, मैं नहीं कर सकता सिफारिश, जाओ किसी और से जाके कहो। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे आप ही सिफारिश कर दें, देखनी है पर कितने लोग मुश्किल में है। तो वो कहेंगे आज मेरा रब इतने गुस्से में है, इससे पहले कभी नहीं था ना इसके बाद कभी होगा, मैं नहीं कर सकता, तुम जाओ मुझे तो माफ करो, तुम जाओ किसी और को कहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ये उलुल अज़्म पैगंबर हैं, इनकी ये हालत होगी तो आप किसी और का कैसे कह सकते हैं, वो भी इनकार कर देंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर वो कहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर लोग जब मेरे पास आएंगे तो फिर मैं उसके बाद सज्दे में गिर पड़ूंगा, सज्दे में गिर पड़ूंगा और वो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करूंगा जो कलमे मेरे दिल में वो उस वक्त डालेगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नहीं पता ना अल्लाह ताला ने किसी को बताया। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा अब ए मोहम्मद आप अपना सार उठाएं और आप सवाल करें, सिफारिश करें, आपकी सिफारिश सुनी जाए, फिर मैं अल्लाह ताला से सिफारिश करूंगा और फिर लोगों का हिसाब किताब शुरू होगा, यानी पहले ये शिफात उज़्मा होगी, बड़ी सिफारिश होगी कि सबका सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे तो लोगों के सबके हिसाब किताब स्टार्ट हों, उससे पहले तो होंगे भी नहीं, और उसके बाद जो शिफात होगी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनकी करेंगे जो तौहीद पे दुनिया से गए थे, उनकी करेंगे। हाँ मगर उनके गुनाह थे, कई तो होंगे जो जहन्नुम में चले जाएंगे, वहां पे उनकी सिफारिश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलवाएंगे उनको, और कई होंगे ऐसे जिनको पहले ही शिफात से आपकी, और वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे बगैर हिसाब किताब के। तो शिफात ये होगी, लेकिन देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इजाजत देगा, वरना शुरू में ही वो सारों की शिफात करके अपने साथ ही ले जाते, जहन्नम में भी किसी को जाने की क्या जरूरत है। अगर सिर्फ शिफात से ही काम हो जाते होते तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अपने बाप की शिफात करा देते, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा लेते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के लिए इतना रोए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब को निकाल लेते जहन्नम से। तो ये ऐसा नहीं होता कि जो आपने शिफात को समझा हुआ कि अंधेर नगरी है, ऐसा नहीं है, शिफात की इजाजत अल्लाह ताला की तरफ से आएगी जिसके लिए आएगी और जिसको अल्लाह ताला ऑनर देना चाहेगा कि ये देखो ये मेरे बंदे मुझे इतने प्यारे हैं, ये खुद तो जन्नत में जा रहे हैं, इनके कहने पे मैं दूसरों को भेज रहा हूं, यानी उनको ऑनर दिया जाएगा, एजाज दिया जाएगा, है तो वो अल्लाह ताला का ही फैसला उनके दिल में अल्लाह ताला डालेगा। और फरिश्तों का क्या हाल होगा, सफ दर सफ खड़े होंगे, सफ दर सफ, वल मलाइका तो सफा, यौम यकूमुर रूह वल मलाइका तो सफा, तो वो कैसे क्या अल्लाह ताला के सामने फरमा बरदार होके खड़े होंगे। असल में आज इसी दरवाजे से शिर्क दाखिल हुआ है, क्योंकि लोगों ने कहा हमारी तो शिफात फलाने ने करानी है, उसके पास पास चले जाओ, उसके आगे माथे टेक रहे हैं, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा तो ये पार इसने करना है, हमने आपका पल्लू पकड़ लेना है, आपने ही हमने वहां पे पार कराना है, ये तो अपने मुरीद को छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं गौसे आजम अल्लाह माफ करे कब्र में भी आ गए, पता नहीं इनको किसने बता दिया ये बातें, किसने आके बताई, कहां से इनके ऊपर वही आ गई कि इनको ये बातें पता चली कि वो कब्र में आ गए, और उन्होंने तो आके मारा उनको मुनकर और नकीर को कि मेरे मुरीद से बातें पूछते हो, तुम उनसे सवाल करते हो, तुम अल्लाह हुआ कब्र। तो ये शिफात का अकीदा जब गलत करते हैं ना हम, उसके अंदर गड़बड़ होती है तो शिर्क का दरवाजा खुल जाता है। और समझते हैं कि बस शिफात फलाने को भी मिल जाने, खुद ही फैसला कर लिया आपने, आपको क्या पता किसको मिलेगी कि किसको नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला अगर उसको शिफात की का इज़न दे भी देता है तो क्या वो मेरी शिफात कर भी सकेगी या नहीं। अल्लाह अकबर, जो इसको दुनिया की शिफातें और सिफारिशों की तरह बिल्कुल नहीं समझे, बल्कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की जरूरत है कि, और सही समझने की जरूरत है, ताकि इंसान कहीं ऐसा ना हो कि शिर्क कर बैठे। लेकिन दुनिया में तो शायद सिफारिश कोई इसलिए लेकर आता है, कहता है ना लाके, आज ही इसको आप छोड़ दें, नहीं, आपको गलतफहमी हो गई, ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, मैं इसको जानती हूँ। तो फिर आप कहते हैं अच्छा ये जानती है तो चलो ठीक है, फिर इसको छोड़ देते। अल्लाह ताला के इल्म के आगे तो कोई नहीं कह सकता कि मैं जानती हूं कि ये कितना अच्छा है, इसको अल्लाह तू छोड़ दे, मुझे पता है या अल्लाह कि कितना ये नेकियां करता था। अल्लाह ताला तो हर चीज को जानता है। फैसला करने में जो चीज रुकावट बन सकती वो यही हो सकती है ना, किसी को पता ही ना हो तो भी कोई आके कह देते हैं जी आपको नहीं पता, नहीं मुझे पता है ना, मैं मुझे पता है, मैं तो इसको बचपन से जानती हूँ, मुझे पता ही ऐसा है नहीं। तो इंसानों के लिए तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं, अल्लाह ताला के लिए आप कैसे कह सकते। तो वहां भी हर एक को तो अपनी अपनी पड़ी होगी, जिस वक्त अपने फैसले हो जाएंगे तो तब अल्लाह ताला जिसको इज्जत देगा अब तुम शिफात करो उसके लिए वो कर सकेगा। या अलमुमा बहिना ईदी ममा खलफाउम, देखिए अब यहाँ पर ही नफी हो गई इस बात की कि अगर कोई ये समझे कि पता नहीं नाउज बिल्ला अल्लाह ताला को तो पता नहीं होगा, तो वो सिफारिश करके फिर कहेंगे कि या अल्लाह हम इसको जानते हैं, हम इसको पर्सनली जानते हैं, हम तो इसके हमसाए में रहते थे। अल्लाह ताला तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब है, जैसा अल का इबादिया नहीं फाइनी करीब, अल्लाह ताला तो इतनी करीब है, वो नहीं जानता होगा तो और कौन जानता है, वो तो वो जानता है जो तुम्हारे सामने और जो तुम्हारे पीछे। बाज ने इसका तर्जुमा इसका इससे मफहूम ये लिया है कि तुम्हारे माजी को भी जानता है और मुस्तकबिल को भी जानता है, बाज ने कहा जो दुनिया को भी जानता है और तुम्हारी आखरत को भी जानता है, हर हर चीज जानता है और उसकी हर हर डिटेल को जानता है। ये भी नहीं कि ऊपर ऊपर सत ही एक इल्म हो, डिटेल नहीं, खाइनतल आयुन व मा तुख्फि सुदूर को भी जानता है, यालमु खाइनतल आयुनी व मा तुख्फि सुदूर, आंखों की जो खयानत हुई है उस तक को जानता है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं ना कि आदमी बैठा रहता है लोगों के बीच में और सामने से एक औरत गुजरती है, वो देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, जब वो देखता है कि कोई भी नहीं देख रहा तो आंख बचा के उसकी तरफ देखता है, जूं ही उसको ये लगता है कि कोई देख रहा है तो फौरन आंख हटा लेता है। उसके बाद इसी आयत को तिलावत फरमाया, इसी बात को फरमाया, यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, दिल में सोचता है कि कोई नहीं देख रहा मुझे, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा होता है। इंसान दिल में छुपाता है बात को, वो उस बात को भी जानता है, और जो वसवसा उठता है, जो ख्याल उठता है, जो सोच आती है, वो उस सोच का, हालांकि सोच का तो कुछ यानी टेंजिबल नहीं है ना, वो कोई चीज नहीं है जिसको कोई देख रहा हो या किसी को पता चल सके। एक चीज जाहिरी चीज है, उसका इल्म हम कहते हैं कि ये मसलन कोई जमीन का इल्म है, कोई चीज का इल्म है, लेकिन एक चीज है जो सोच है, उस सोच को जानना, निगाह उठी और किस ख्याल को लेकर गई, दिल के अंदर क्या ख्याल आया, वो उसको भी जानता है। दिल वो जो छुपाते हैं, वो इरादे, वो तमन्नाएं, वो हमार हराम ख्वाहिशात जो दिल चाहते हैं कि हम करें, उनको भी जानता है। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु, वो तो गैब की कुंजियां उसके पास हैं जिनका इल्म किसी को भी नहीं सिवाय उसके, पत्ता भी गिरता है तो वो उसको भी जानता है, बारिश का एक एक कतरा वो जानता है किधर गिर रहा है, जमीन के अंधेरों में पड़े हुए बीज को जानता है, इतनी छोटी चीज को भी जानता है, और सिर्फ जानता नहीं गिन गिन के भी उसने रखा हुआ है और किताब में महफूज है। अल्लाह अकबर, तो उसको गाफिल ना समझो, वो भूलता नहीं है। समंदरों के नीचे इंसानों ने देखे, जमीन पे है ये समंदर, इतनी तरक्की कर ली, अभी वो कहते हैं हमने पूरे समंदरों को एक्सप्लोर नहीं किया, हमें नहीं पता पूरे समंदरों पर, नई नई चीजें बताते रहते, ये तो इनके इल्म का हाल है। और अल्लाह ताला नजर की खयानत तक को जानता है। ये नजर उठी थी तो किस नीयत से उठी, और झुकी तो क्या ख्याल लेके झुकी। अल्लाह अकबर। तो जो तुम्हारी दुनिया को भी जानता, तुम्हारी आखरत को भी, पास्ट को हम कहते हैं पास्ट, चलो पास्ट तो गुजर गया है, उसको भी हम नहीं जानते, क्योंकि हमें नहीं याद रहता। हमें हमसे पूछा जाए, 1 साल पहले आपने इस दिन में क्या किया था, कुछ भी नहीं पता। क्या इल्म है हमारा? ये इल्म का नक्स है ना, कुछ कुछ जानते ही नहीं, और मुस्तकबिल तो बिल्कुल ही नहीं जानते। कल किसको मौत आ जानी है, किसके साथ क्या हालात हो जाने हैं, किसको किस बीमारी ने आ पकड़ना, कुछ भी नहीं जानता इंसान। अगर जानता होता तो सब अपने आप को बचा लेते, और फिर भी इंसान ये चीज लेके समझता है कि फलाना तो इल्मुल गैब है उनके पास, बिल्कुल ठीक ठीक बताते हैं। उसने मेरी जो ये बात बताई थी बिल्कुल ठीक निकली। अल्लाह अकबर। खिजर और मूसा अलैहि सलाम से बढ़ के कौन इल्म वाले हो सकते थे? दोनों अल्लाह के पैगंबर कह सकते हैं, या अल्लाह ताला के भेजे हुए खिजर अलैहि सलाम थे। तो कितना उनका इल्म था। मूसा अलैहि सलाम ने तो फरमा लिया था, इस वक्त कोई भी ज्यादा मेरे से ज्यादा इल्म वाला नहीं है, और वही का इल्म था उनके पास। और तब भी जब दोनों जा रहे हैं, और कश्ती के तख्ते के ऊपर एक चिड़िया बैठी है जिसकी चोंच में पानी का कतरा है, और सुभान अल्लाह, उस वक्त खिजर अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम से क्या फरमाते हैं कि ऐ मूसा, मेरा और तेरा इल्म अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में ऐसे है जैसे ये बर्ड, ये चिड़िया, इसकी चोंच के अंदर जो पानी का कतरा है इस समंदर के मुकाबले में। नहीं तो कोई आप मुकाबला तो सोच ही नहीं सकते ना। तो सोचें फिर कि अल्लाह ताला का इल्म कितना। और किसी को भी कोई पूछता है तो उसके इल्म का हाल देख लो, उसको तो आके लोग बता रहे होते हैं जी मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला हल कर दीजिए। उसको तो नहीं पता कि ये क्या। जिन्नों तक को नहीं पता चला था सुलेमान अलैहि सलाम फौत हो गए, जिन थे। अब जिन्नों से ही तो निकलवाते हैं ना चीजें के, इसके कब्जे में जिन है, और वो फिर बताएंगे कि क्या इसके फ्यूचर में होना है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता और तुम नहीं जानते। फिर भी इंसान कहता है मैं बहुत जानता हूं, मुझे बहुत पता है, और अपने आप को बड़ी चीज समझता है। अल्लाह अकबर। अच्छा ये जो पीछे पूछता है ना, मंजल, कौन है जो, ये पूछा नहीं जा रहा कौन है जो सिफारिश करे, यानी कि वो हाथ खड़ा करें किसने सिफारिश करनी, ऐसे नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, कौन है जो सिफारिश कर सकता है उसके सामने, इसमें खुद ही एक इनकार, इस्तफहामे इनकारी इसको कहते हैं कि कोई भी नहीं कर सकता मगर उसके इज़्ज़त से। वला युहीतूना बिशेई मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और नहीं अहाता कर सकती किसी चीज का उसके इल्म में से मगर जो वो चाहे। इसके दो मतलब हैं, अल्लाह के इल्म से मुराद क्या है, इल्मी ही से मुराद क्या है, उसके इल्म में से कोई चीज का अहाता नहीं कर सकते, यानी उसके इल्म में से कुछ ले नहीं सकते मगर जो वो दे दे बस किसी को। तो अल्लाह ताला का इल्म क्या है? नंबर 1, अल्लाह ताला के बारे में इल्म, कि वो कौन है, वो कैसा है। जैसे अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो तो सोता भी नहीं, उसको तो ऊंग भी नहीं आती, उसकी तो जात हई और कयूम, हम क्या जाने, हमें क्या पता उसकी जात हई और कयूम। लेकिन हम तो सिर्फ ये जान सकते हैं हाँ एक कोई खुदा है, कोई बनाने वाला है इस कायनात को। यहां तक तो इंसान जो है ना पा लेता है, कायनात में देख के भी गौर व फिक्र करके भी पा लेता है इस इतना सा इल्म। लेकिन उसकी हस्ती के बारे में इल्म कोई भी नहीं जान सकता जब तक कि वो खुद ना दे। अच्छा अब अल्लाह ताला के बारे में इल्म एक चीज है, और दूसरी चीज है अल्लाह ताला जिन चीजों को जानता है उनके बारे में इल्म। यानी अल्लाह ताला तो हर चीज का इल्म रखता है, उस इल्म में से वो जिसको चाहे जितना चाहे जब चाहे दे। कोई खुद नहीं इल्म ले सकता जब तक अल्लाह ताला ना फैसला कर दे कि इसको मैंने ये इल्म देना है। तो यानी इल्म लेने में भी अल्लाह की मर्जी चलेगी, और इसमें भी जैसे मैंने आपको कहा शिर्क आ गया, इसमें भी शिर्क आ गया कि हम सोचते हैं कि फलां के पास वो इल्म है जो इल्मुल गैब अल्लाह ताला के पास है ना, तो वो ही जानता है कि कल को किसने मरना है, कल को किसके साथ क्या होगा, कोई भी नहीं जानता, लेकिन इसके पास भी है, तो इसने अल्लाह ताला से ले लिया इल्म, वो इसको भी पता चल जाता है, और दिलों के हाल इसको भी पता चल जाते हैं। ये तो इसके पास जाते हैं ना, वो जाके बैठे तो वो बता देते हैं आपको कि आपके क्या क्या मसले हैं। ये कहां से हमने सोच लिया? तो उसके इल्म में से कोई चीज कोई ले नहीं सकता। पीर साहब को मालूम नहीं हो जाता? अल्लाह ताला के इल्म में से कोई भी नहीं कोई कुछ ले सकता। अल्लाह अकबर। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कामिल इल्म नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो इल्म दे दिया, मेराज पे आपको सैर कराई, या जो इल्म दुनिया में दिया, बस वही था। आपने कई वाकयात, कई दफा मैंने आपको यह हदीस सुनाई है कि जैसे वो औरत आई, उसने एक सवाल पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर वो जाने लगी, और फिर आपने उसको कह दिया था कि हाँ ठीक है ऐसे कर लो, तुम अपने मैके में जाके अपनी इद्दत गुजार लो, और फिर वो जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया वापस और फिर पूछा कि तुम क्या कह रही थी, और फिर उन्होंने अपना मसला दोबारा बयान किया, आपने फरमाया नहीं वहीं पर इद्दत करो जहाँ पे तुम्हारे शोहर ने की वफात हुई थी। इस तरह और भी वाकयात मिलते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राइल अलैहि सलाम को भेजा जाता था कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे। इसी तरह आयशा रजी अल्लाह ताला पे तोहमत लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे कि क्या माजरा है, सहाबा कराम को पूछते रहे बुला बुला, गवाहियां लेते रहे, नहीं जानते थे जब तक अल्लाह ताला ने सूरह नूर नहीं उतारती। हौज़े कौसर पे क़यामत के दिन होंगे कुछ लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस वक्त देखूंगा कि मेरे उम्मती हैं, तो वो हौज पे आने की कोशिश कर रहे होंगे, फरिश्ते उनको रोक देंगे, तो मैं कहूंगा कि ये तो मेरे उम्मती हैं, फरिश्ते कहेंगे आपको नहीं पता इन्होंने आपके बाद क्या क्या चीजें ईजाद कर ली, इसका मतलब आपको नहीं पता कि अब लोग इस वक्त दुनिया में क्या क्या बिदतें ईजाद करके बैठ गए हैं, और हम कहते हैं वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब पता चल रहा है वहां पे। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामत वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। वो तो उनकी पुकार से भी गाफिल हैं, वो तो जानते ही नहीं है, ये पुकार रहे हैं उनको जी जो इनकी पुकार को सुन ही नहीं सकते, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे होते, खड़े होते वहां पे जब मदीना में रोज़ा रसूल पे, तो वहां पे खड़े होके उनको पुकारना शुरू कर देते, वो उनकी पुकार से भी गाफिल होते हैं। लेकिन वो लोग जो ये अकीदा रखते हैं कि वो भी जिंदा हैं और वो भी कहीं पे भी मौजूद हो जाते हैं, जब हम उठ के खड़े होके मिलाद पढ़ते हैं तो वो वहां पे आ जाते हैं, तो है ही की जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो की तो हयात नहीं है, वो अल्लाह ताला के पास जिन मकामात पे है वो वही है, ये नहीं वो दुनिया में आके यहाँ पे घूम रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं और मिलादों पे भी आ जाते हैं, और जब हम पुकारते हैं तो तब भी पुकार को सुन लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया उससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है, उससे ज्यादा बहका हुआ कौन हो सकता है जो उसको पुकारे अल्लाह को छोड़ के, जो उसकी पुकार को नहीं सुन सकता क़यामत तक। किसी इंसान के लिए भी यही ट्रू है, वो कोई औलिया अल्लाह हो, वो कोई नबी हो, वो कोई बुजुर्ग हो, वो नहीं सुन सकते जो दुनिया से जा चुके हैं। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मुझे दरूद मेरे ऊपर पढ़ते तो अल्लाह ताला फरिश्ते को मुकर कर देता है, वो दरूद मेरे तक तुम्हारा दरूद पहुंचाता है, ये नहीं फरमाया कि मुझे यहीं से बैठे हुए पता चल जाता है कि कौन कौन है जो मेरे ऊपर पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा, और वो वहां से देख रहे हैं सबके हालात को। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मुल गैब नहीं रखते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन, अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि अल्लाह ताला कि गैब को तक कोई रसाई नहीं हासिल कर सकता सिवाय अल्लाह ताला जितना इल्म किसी को दे दे। अब जैसे ये भी गैब है ना, जन्नत है जहन्नुम है, अल्लाह ताला ने इनके इल्म पैगंबर को दिए तो उनको पता चले, तो जितना इल्म दे दिया उन्होंने अपनी उम्मत तक भी पहुंचा दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ चीज को छुपा लिया हो, और उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि हमें खुद ही ये इल्म है, हमें अल्लाह ताला की तरफ से नहीं, हमें हमें तो खुद ही ये पता है पहले से ही। आप देख लें नबुवत से पहले की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं जन्नत जहन्नुम कयामत इन चीजों की बातें बताई हो लोगों को, ऐसा नहीं था। जो वही से आपको इल्म मिला बस वो था। तो अब जो कोई गैब का दावा करे जानने का, उसके पास कौन सी वही आती है? तो ये अकीदा रखना कि इनको सारा इल्म हो गया, इनको पता चल जाता है, ये गलत है। और यहीं पे शिर्क आ जाता है। तो वो तो अपने इल्म में से जिसको चाहे जितना चाहे जब चाहे अता करे, और अल्लाह ताला देता है, दुनिया का भी इल्म देखता है। देखिए ये दुनिया में जितनी इन्वेंशंस होती हैं, इजादात होती हैं कि चीज इजाद कर ली, ये इजाद कर ली, इंसानों को अल्लाह ताला ही इल्म देता है, जितना चाहे और जिस जमाने में चाहे जिसको चाहे अता करे। वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ध, उसकी कुर्सी वसी है, उसकी कुर्सी की जो एक्सटेंड हुई भी है कहां तक, आसमानों और जमीन तक, यानी पूरी कायनात पे छाई भी है उसकी कुर्सी। कुर्सी क्या चीज है? अब ये इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन जो एक हमें रिवायत मिलती है कि कुर्सी ऐसे जैसे जिसको कहेंगे फुट स्टूल, जिसको कहते हैं फुट स्टूल, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हम दुनिया में लोगों के लिए देखते हैं कि कोई बैठने की किसी कुर्सी होती है इंसानों के लिए, या कोई फुट स्टूल होता है, इस तरह से कुछ है। हम इसकी कैफियत कोई बयान नहीं कर सकते, कोई बयान नहीं कर सकते। बस हमें ये इतना पता चलता है रिवायात से कि कुर्सी अर्श के नीचे, तो अर्श अलग चीज है, कुर्सी अलग चीज है। और ये भी हमें जैसे हमें एक रिवायत से ही पता चलता है कि ये पांव रखने की जगह है, वरना तो हमें कुर्सी का भी ना पता चले कि क्या है। तो वो कितनी है, अब इसको ना कोई तसव्वुर करे और ना कर सकता है, ठीक है? लेकिन बस एक बता दिया गया हमें ताकि इंसान को समझ आ जाए कि उस रब की अजमत क्या होगी जिसकी कुर्सी ने आसमानों जमीन को घेर रखा है। अल्लाहु अकबर। और रिवायत में आता है कि जिस तरह निया पालान चिरचिराता है ना, नहीं नहीं चारपाई या कुछ उधर नहीं नहीं होती तो चिरचिर की आवाज आती, कुर्सी अल्लाह ताला की अजमत की वजह से चिरचिरा रही है। अल्लाह हु अकबर। और कुर्सी तो नीचे है, अर्श इससे ऊपर है, अर्श उससे भी बड़ी अल्लाह ताला की मखलूक है और बड़ी अजीम मखलूक है जो अर्श है। और उसके बारे में ये आता है हदीस में कि कुर्सी जो है आसमान और जमीन जो है ना, वो कुर्सी के मुकाबले में कैसे हैं? आसमान और जमीन पे यहाँ पे आया ना वसया कुर्सी, कुर्सी वसी है उनसे, तो कितनी वसी है? अब कैसे पता चले? तो इब्ने अब्बास ने जो रिवायत है उससे हमें पता चलता है कि सातों जमीनें और सातों आसमान, हमें ये तो पता चल गया ना कि जमीन सात हैं, अल्लाहुल्लज़ी खलक सबा समावाति व मिनल अर्दी मिथलहुन, अल्लाह वो है जिसने सात आसमान बनाए और जमीनें भी उसकी मिसल, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, तो हमें बता दिया कि जमीनें भी सात हैं। तो सातों जमीनें और सात आसमान अगर फैला दिए जाएं, यानी बिल्कुल उनको फ्लैट कर दिया जाए, तो क्या बन जाएंगे? बिल्कुल फ्लैट हो जाए, तो भी ये कुर्सी के मुकाबले में कैसे हैं? जैसे सातों आसमान और जमीन को फ्लैट किया है ना, तो उनको ऐसे समझ लें जैसे एक रिंग है, ये छोटा सा रिंग आप अपनी उंगली में पहनते हैं ना, ये रिंग है, ये सातों आसमान और जमीन। और कुर्सी क्या है? जैसे वो इतना वसी सहरा, डेजर्ट में कभी आप देखें कि डेजर्ट हदे निगाह तक होता है, दूर दूर तक आपको सिर्फ सैंड ही नजर आ रही है, समझ लें अगर कंपैरिजन करना है ना, तो दिस इज द कंपैरिजन। अच्छा मैं सोच रही थी कि देखिए ये रेन जो है हमारे घर में भी कहीं अगर गिर जाती ना, हमारे घर तो छोटे छोटे हैं, घर में भी गिर जाए तो आप ढूंढते रहते, मिलती नहीं, रिंग की क्या हैसियत है छोटे छोटे घरों के मुकाबले में। वो कहां सहरा में अगर कोई रिंग पड़ा हो तो वो तो बिल्कुल ही ना नजर आएगा। घर में नहीं पता चलता तो सहरा में कैसे नजर आएगा। आप देखें कि कुर्सी इतनी बड़ी है जैसे एक सहरा है, और उसके सामने ये इतने छोटे हैं आसमानों और जमीन, सातों आसमानों और सातें जमीन इतने छोटे हैं। और कुर्सी अर्श के मुकाबले में इसी तरह जैसे एक लोहे का जो हलका है, यानी जैसे रिंग है, चटियल मैदान में डेजर्ट में एक रखा हुआ, कुर्सी इतनी छोटी है अर्श के मुकाबले में, और जमीन और आसमान इतने छोटे हैं कुर्सी के मुकाबले में। और हमारा तो ये हाल है कि अभी तक हमने आसमान की सारी चीजों को जाना ही नहीं है। अभी तक इंसान कहते हैं कि जो इन साइंटिस्ट ने कहा है कि ये कायनात फैल रही है, फैल रही है, उसका सिरा अभी तक हमें नहीं पता कि इसका एंड कहाँ है। और आसमान से मुराद, हम सात आसमान बात करते हैं तो उससे सारी ही ये कायनात मुराद है, और उससे ऊपर भी ये जितनी कायनात, सितारे सैयारे जिनको हम कहते हैं ना कायनात, ये सब पहले आसमान के नीचे हैं। सातों आसमानों को ले लिया जाए, अल्लाह हु अकबर, तो सोचें जो अर्श से भी ऊपर अल्लाह ताला की जात है, वो जात कितनी अजीम होगी। हम कैसे जान सकते हैं, हम उसकी बड़ाई को नहीं जान सकते, उसकी किबरियाई को नहीं जान सकते, उसकी अजमत को नहीं पहचान सकते हैं अल्लाह। इसीलिए जब इंसान दुआ करे तो ये कहे कि अल्लाह तू कितना बड़ा है कि तेरी हमारे तो जहन के अंदर आ ही नहीं सकती अल्लाह तेरी जात, और हम तो कितने छोटे हैं कि हमारी सातों आसमानों और जमीनें, सातों भी अगर कुर्सी के मुकाबले में इतनी छोटी हैं तो उन सातों आसमानों जमीन को मिला के वो इतना छोटा रिंग है, उसमें एक जमीन की हमारी क्या हैसियत होगी इस कायनात में, और उसके अंदर एक मेरी क्या हैसियत होगी या अल्लाह। तो अल्लाह तू मुझे अजाब दे के क्या करेगा, तो मुझे माफी कर दे कि तू कितना बड़ा है, और मेरी मेरी तो कोई हैसियत है ही नहीं। एक जर्रे की बिना कोई हैसियत होती है, एक जर्रे के बराबर भी नहीं है जर्रा, तो शायद ये हमारी जो हमारा जो सिस्टम है शायद ये एक जर्रे के बराबर होगा। जो साइंसदानों ने अभी तक जितना इस कायनात को स्टडी किया तो वो कहते हैं ये हमारा सोलर सिस्टम एक जर्रे के बराबर है, जैसे रेत का एक जर्रा बीच पे पड़ा हुआ। तो मेरी और आपकी क्या हैसियत है, तो ये बात जब इंसान सोचता है उसका जहन दंग रह जाता है। और फिर फरमाया कोई ये ना समझे कि अल्लाह ताला को कोई थकन हो जाती होगी, हाय इतनी कायनात को वो कैसे संभालता होगा। वला याउदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसको थकाती नहीं है इन दोनों की हिफाजत। सिर्फ ये नहीं कि वो इनका मालिक है, या सिर्फ ये नहीं है कि वो इनको इनका बादशाह है, बल्कि वो इनकी हिफाजत भी करता है, इनकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, देखे जरूरी नहीं कोई चीज हमारी हो तो हम उसकी हिफाजत भी कर रहे हैं। अब बाज दफा हमारे कपड़े होते हैं या हमारा घर होता है, हमारा होता है, लेकिन उसकी हम हिफाजत नहीं करते, बस ठीक है फिका हुआ है, उसकी चीजें खराब हो रही हैं, कोई चीज उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन वो हिफाजत करता है। अल्लाह हू अकबर, लेकिन ये हिफाजत से उसको थकाती नहीं, उसको एग्जॉस्ट नहीं करती, वो इसे घबराता नहीं है। हमें तो दो से चार काम करने पड़ जाए ना तो हमारा मूड खराब हो जाता है, हम बोलना शुरू हो जाते हैं ये मेरे ऊपर ये सारे काम आ गए और मैं तो थक के रह गई और ऐसे हो गई। और अल्लाह ताला को इतनी कायनात चला के भी वो, और कब से चला रहा है, और कितनी उसकी मखलूक होगी पता नहीं है इस कायनात में। हम तो सिर्फ एक बोने से लोग हैं और अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि हर चीज को इसी कंपस में देखते हैं कि जैसे कि बस हम ही सिर्फ हम हैं इस कायनात में और कोई है नहीं। अल्लाह के जुनूद को ना उसके सिवा कोई नहीं जानता, ला यालमुल जुनूद रब्बिका इल्ला हू, वो ही सिर्फ जानता है कि मेरे कहाँ कहाँ लश्कर क्या क्या है। हम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि हम ही हैं जैसे पूरी कायनात में, और बस सारा फोकस ही हमारा हमारा ही है, बस मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। और देख लें कि एक चीज की हिफाजत उसको दूसरी चीज की हिफाजत से गाफिल नहीं करती, कि एक चीज की हिफाजत कर रहा, फिर देखिए दो चार चीजें हमारे सामने हो जाए, मतलब दो चार बच्चे ही हों, अब उनको टेक केयर करना पड़ जाए तो हमें हेल्प चाहिए होती है, कि एक को देखते हैं तो दूसरा रो रहा है, दूसरे को देखते हैं तो तीसरे ने कुछ कर दिया। नहीं देखिए सुभान अल्लाह, सबको बैक वक्त एक ही टाइम पे सारों का निजाम चल रहा है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जिन्नात हैं, चाहे वो फरिश्ते हैं, चाहे वो हैवान हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो परिंदे हैं, चरिंद हैं, चाहे वो सितारे सैयारे हैं, सबका निजाम चल रहा है। आखिर सितारे सैयारे भी तो चल रहे हैं ना, कॉन्स्टेंट मूवमेंट में है, सबको चला रहा है और वो थकता भी नहीं। कुल्ला योमिन हुआ फी शान, हर दिन वो एक नई शान के साथ है। अल्लाह अकबर, ये है तुम्हारा खुदा, वो तुम किधर जाके टकरे मारते फिरते हो, किनको खुदा बनाया हुआ, किनको अपनी हाजतें पूरी करने के लिए समझते हो कि ये कुछ कर सकते हैं। वहुवल अलीयुल अज़ीम, अली उलूव से है ऊंचा, वो अपनी जात के लिहाज से भी उलूव में है कि अपनी जात के तबार से भी वो बुलंद है, ये नहीं कि आप कहीं हर जगह पे अल्लाह ताला है, हर जगह पे नहीं। अर रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पे मुस्तवी है, ये कुरान कहता है, अब हम कहते हैं हर जगह पे है, नहीं। हाँ उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसका देखना, उसका सुनना, उसका इल्म, सब चीजें हर जगह पे हैं, लेकिन उसकी जात अर्श पे है मुस्तवी। आप सरसर ने भी फरमाया था ना, तुम उस पर रहम करो जब जमीन पे है तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, ये नहीं फरमाया था हर जगह वाला तुम पे रहम करेगा, ठीक है। और अपनी जात के लिहाज से भी बुलंद है, अपनी सिफात के लिहाज से भी बुलंद है, कोई उसकी किसी सिफत के अंदर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और उसकी सिफत आला है, मुकम्मल है, ना सिर्फ बेस्ट है, कंप्लीट है, एक्सीलेंस के लेवल पे है, जिसमें ऐब की सिफत कोई है ही नहीं। अब देखिए ना, दुनिया में किसी के पास कोई अच्छी सिफत है तो कोई बुराई भी होती है, हम कहते हैं ना फूल है तो कांटे भी होते हैं साथ, लेकिन अल्लाह ताला की जात वो है जिसमें कभी कोई ऐब है ही नहीं, यही तो सुबहान का माना है, सुबहान अल्लाह, जब हम कहते हैं कोई ऐब नहीं, कोई कमी नहीं। अल्लाह हु अकबर। लेकिन हम बाज दफा अल्लाह ताला की सिफात में भी किसी और को उससे ऊपर कर देते हैं, मसलन अल्लाह ताला रहम करने वाला है, रहमान है, तगफिरुल्लाह ही रब्बी, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा रहम करने वाला समझ लेते हैं, कि जब हम कहते हैं उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, हाय वो बेचारे, अल्लाह ताला ने उसकी मदद क्यों नहीं की, वो देखो वो बच्चे रो रहे, वहां पे उनके साथ जुल्म हो गया, उस जगह पे वो भूख भूखे प्यासे बैठे हुए, तो तुम अल्लाह ताला से ज्यादा रहम करने वाले हो, या फिर हमें ये होता है ये ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम अल्लाह ताला से ज्यादा इल्म रखने वाले हो, या फिर हमें ये होता है कि ओ अल्लाह ताला रहम करने वाला है, लेकिन वो जो हमारे पीर साहब हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो इतने रहम करने वाले हैं, कोई उनके दर पे चला जाए बस जानी है, तवाइफ है, कोई डाकू है, शराबी है, बस बस वो करनी वाले सबके काम बना देते हैं। तो जो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला के पास जो रहम है, और अल्लाह ताला जो अता करने वाला है, उसकी अता से ज्यादा भी कोई करने वाला है, वो तो अल अली है, अल्लाह ताला की रहमत को महदूद कर देते हैं और बुजुर्ग की ज्यादा है, यानी वो अपने दर से नहीं किसी को खाली जाने देगा, उसको रहम आ जाता है तवायफों पे भी, जानियों पे भी, और इन पे भी, अल्लाह ताला को तो नहीं आता, या मुझे पता है कि किस पे रहम होना चाहिए, और अल्लाह ताला से ज्यादा तो मैं ही रहम वाली है, नाउज बिल्ला। तो इस तरह की बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि जिसकी वो मखलूक है, सबसे पहले तो उसकी मखलूक है, वो उसी का काम है। कि वो उनके हाल अहवाल को देखे। मेरा नहीं है, मेरे जिम्मे नहीं लगाया गया कि मैं ये कमेंट्स करूं। और दूसरे, जितनी उसकी रहमत है किसी की हो ही नहीं सकती, जितना मुझे किसी पे तरस आ रहा है, रहम आ रहा है, हाय बेचारा हाय बिचारी, उससे ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत है। तो ये मत किया करें कि अपने आप को बहुत रहम वाले समझ लिया और अल्लाह की रहमत को कम समझा। और अल अजीम अजमत वाला है। इसी वजह से ये देखें, ये दो नाम भी बड़े जबरदस्त नाम है अल्लाह ताला के, कि अल्लाह ताला ने इन्हीं नामों से हमें सिखाया कि ये हम रुकू और सजदे में रखें इन नामों को, सुभान और रब्बी अल अजीम। जब मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपने आप को झुका देती हूँ, अल्लाह तेरी जात पाक है, मेरा रब बड़ा ही अजीम है, पाक है मेरा रब जो बड़ा अजीम है, झुका झुकी हुई हूं मैं, और मैं ये कह रहा हूं। और फिर अपनी नाक जमीन पे रख के मैं ये कहूं, सुभान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब जो आला है, अल्लाहु अकबर। तो ये आयतल कुर्सी है जो हमारे अकीदे को सही कर देती है। अगर वाकई इसको हम समझ के पढ़ें, तो आइंदा से जब पढ़ें इसका तर्जुमा याद करें, तो इस तरह से करें कि एक एक लफ्ज आपको समझ आए, और फिर इसका यकीन अपने अंदर बिठाना है। और जब मसाइब आए, मुश्किलें आए, परेशानियां आए, तो देखें कि आयतल कुर्सी पढ़ के देखें, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, और उम्मीद अल्लाह ताला से ही होगी, और फिर किसी और से नहीं उम्मीद रहेगी कि वो रब, मेरी तो अकल भी दंग रह जाती है, अल्लाह तू ऐसा है, फिर आपका दिल ही नहीं करेगा कभी किसी और की तरफ तवज्जो करने का कि वो मेरे काम करे। ला इकराह फिद्दीन। अब जब ये सारी बात कर दी गई, तो अब देखिए अल्लाह ताला तो ऐसा है, अब फिर भी अगर कोई नहीं मानता तो कोई मजबूरी नहीं है किसी को, किसी को जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं। इकराह का मतलब क्या है? जबर करना, फोर्स करना, मजबूर कर देना किसी को। दीन में दाखिल होने के लिए कोई मजबूरी नहीं है, जो दाखिल होना चाहे तो हो जाए, नहीं होना चाहिए तो नहीं। इम्मा शाकिर हूँ इम्मा कफूर। ये तो फिर फैसला अल्लाह ताला आखरत में ही करेगा कि उसके साथ क्या करना है उसने। लेकिन दुनिया में जो ये लोग कहते हैं तलवार की जोर पे इस्लाम फैला, और या किसी को जबरदस्ती इस्लाम के अंदर लाने की कोशिश की जाए, ये नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कहा ही नहीं गया। क्योंकि हमने क्यों चाहते हैं कि कोई इस्लाम ले आए? इसलिए चाहते हैं कि ये चलो निजात पा जाए, ये जन्नत में दाखिल हो जाए। तो अगर किसी को जबरदस्ती लेकर आए और वो दिल से ये बातें नहीं मानता, तो वो वैसे ही जन्नत में नहीं जा सकता। लिहाजा किसी को भी मजबूर ना करो, जबरदस्ती ना करो। उसको ये बातें समझ आती हैं तो ठीक है, नहीं समझ आती तो वो अपने कुफर पे रहे। फिर कयामत का दिन तो है ना फैसले के। अब कुछ लोग इसको गलत सेंस में देते हैं, और वो कहते हैं जब उनको कहा जाए नमाज पढ़ो, हिजाब लो, हलाल खाओ, वो कहते हैं ला इकराह फी दीन, और कोई मजबूरी नहीं है दीन के अंदर, कोई मजबूर किसी को नहीं कर सकता। भाई जब दीन के अंदर दाखिल हो गए तब तो जरूरी है करना, तब तो इसको फॉलो करना जरूरी है। जब नहीं दाखिल हुए तो कोई आपको दाखिल करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा, यानी दाखिल होने के लिए कोई मजबूर मजबूर नहीं करना किसी को। ये नहीं है कि कोई काम कर कहने के लिए, नमाज भी पढ़नी है तो कि उसके लिए बच्चे को कहा जाएगा, डांटा भी जाएगा कि भाई नमाज पढ़ो, अब वो कहे लाइक रहा दीन, अब मजबूरी नहीं तो नहीं। जैसे मैं हमेशा आपको एक मिसाल से बताती रहती हूँ कि मसलन एक मुल्क के अंदर कोई एंटर नहीं हुआ, तो उसका अब ठीक है, वो उसके लॉज को फॉलो करे या ना करे, कोई उसको पूछेगा नहीं। लेकिन वंस वो मुल्क में एंटर हो गया, आपको उसको उस मुल्क का कानून मानना पड़ेगा। अब वो ये नहीं कह सकते मैं, मुझे कौन कोई कुछ कह सकता है, नहीं, वरना तुम बाहर हो तो फिर बाहर हो, लेकिन जब तुम दाखिल हो गए तो फिर अब तुम्हें मानना पड़ेगा। कतरी बैन और रुश्द मिनल गई। देखो जो रुश्द है यानी हिदायत है ना, वो गुमराही से अल्लाह ताला ने अलग अलग कर दी, वाजे कर दी, बिल्कुल इतनी वाजे है कि कोई इंसान ये नहीं कह सकता मुझे कंफ्यूजन हो गई, मुझे तो पता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाजे कर दिया, सिराते मुस्तकीम भी बता दिया, और गुमराही का रास्ता भी दिखा दिया कि ये है, ठीक है ना। आपको अल्लाह ताला ने अपने बारे में भी बता दिया है तल कुर्सी में, अब फिर भी कोई अल्लाह ताला को छोड़ के किसी और की तरफ जाना चाहे तो बात तो बिल्कुल वाजे हो चुकी है। फमई यकफुर बिताहूती व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसका बिल उरवति अल-वुथका। फिर जो कोई कुफर करे ताहूत का, ताहूत क्या है, ताहूत तो यानी से तो गईन, या ताहूत हर उस ताकत या कुव्वत को कहते हैं जिसकी इबादत की जाए और वो अपनी इबादत पे भी राजी हो, या जो अपनी इबादत के लिए लोगों को हुक्म दे कि मेरी इबादत की जाए, वो ताहूत है अल्लाह ताला के सिवा कोई भी। अब पैगंबर वगैरह इसमें इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने तो नहीं हुक्म दिया कि हमारी इबादत करो, तो लोगों ने बाद में शुरू कर दी ना, तो लेकिन उनकी वो इसके ऊपर खुश भी नहीं है, लिहाजा वो नहीं इसके अंदर आते। लेकिन उनके अलावा जिसने भी लोगों को अपनी इबादत का कहा, अब ये जरूरी नहीं है कि वो कोई बुजुर्ग ही हो, कोई इंसान ही हो, कोई सिस्टम भी हो सकता है, कोई फिलॉसफी भी हो सकती है जिसको लोग यानी उसकी पूजा शुरू कर दें, उसको खुदा बना लें और उसी के कहने पर चलें और वो इससे राजी भी हो, या वो हुक्म दे कि मेरी इबादत की जाए, तो वो ताहूत है। तो देखें कि ताहूत लफ्ज से ही पता चल रहा है कि जो अल्लाह ताला का नाफरमान, जो अल्लाह ताला के मुकाबले में खड़ा हो जाता है और अपोज कर रहा है अल्लाह के हुक्म को। और इसमें सबसे बड़ा कौन है, इबलीस है, ताऊत सबसे बड़ा इबलीस है, इसलिए कि वो सबसे ज्यादा है ना जो अपनी इबादत की तरफ बुलाता है कि लोग उसकी इबादत करें, लोग उसको माने, तो और कोई सिस्टम भी हो सकता है। इसी तरह एक और भी इसके डेफिनेशन है, हर वो चीज जो अल्लाह ताला से गाफिल कर दे वो ताहूत है। आज की डिजिटल वर्ल्ड देख लें जो अपने आप में इतना मशगूल कर देती कि अल्लाह ताला से इंसान गाफिल हो जाए, हर बातिल ताकत ताहूत है। तो यहां पे कहा गया फमई यकफुर बिताहूत व युमिन बिल्ला, असल में ये ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। ला इलाहा क्या है, फमई यकफुर बिताहूत, इल्लल्लाह क्या है, व युमिन बिल्ला। जरूरी है कि इंसान कुफर करे ताहूत का, ये नहीं कि सारे ही ठीक है, सारे मजाहिब भी सही हैं, वो भी सही है, वो भी सही है, नहीं। जरूरी है एक ईमान वाले के लिए कि वो कहे कि वो गलत है, ये ताहूत है, ये गलत है, कहे कि ला इलाहा, ये नहीं कि सारे इलाह हैं। तो जिसने ये किया फकद इस्तमसका बिल उरवतिल वुस्का, फिर उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया यानी इस्लाम का कड़ा। अगर कोई डूब रहा है और उसके हाथ में एक मजबूत कुंडा आ जाए तो वो डूब नहीं सकता, और उसने इसको पकड़ा भी मजबूती से, वो कुंडा ऐसा है लनफिसाम लहा कि जो टूटना नहीं है। एक चीज है ना कि किसी ने ऐसी चीज का सहारा लिया वो खुद ही टूट गई, मसलन डूब रहा था उसने एक टहनी दरख्त की पकड़ ली, अब जो ही उसने पकड़ी तो वो उसके बोझ से नीचे आ गई और डूब ही गया। लेकिन जिसने कुफर किया ताहूत को और अल्लाह तला पर ईमान ले आए, बस फिर उसने ऐसा एक मजबूत कड़ा थाम लिया यानी उसका सहारा फिर अल्लाह है, फिर उसने ऐसा सहारा थाम लिया ना कि वो कभी टूटना नहीं है ये सहारा। अल्लाह ताला फिर उसकी खुद हिफाजत करता है, अल्लाह ताला फिर उसकी खुद मदद करता है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, ताहूत का इनकार और ईमान अल्लाह ताला पर। अल्लाह वलीयुल्लदीन आमनु, अल्लाह वली है, वली का मतलब क्या, प्रोटेक्टर भी है, हिफाजत करने वाला भी है, गार्डियन भी है, मददगार भी है, दोस्त भी है। अल्लाह वली है किसका, ईमान वालों का, कारसाद भी है, उनके काम बनाने वाला भी है। नहीं, अगर कोई ईमान वाला बन जाता है ना जिसने ताहूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लेकर आया, ईमान इतनी बड़ी चीज है, ईमान इतनी बड़ी चीज है कि वो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अल्लाह ताला का दोस्त है जो कोई ईमान ले आता है, वो अल्लाह ताला का दोस्त बन गया, अल्लाह ने उसको अपना दोस्त बना लिया। सोचें कि जिसको अल्लाह ताला की दोस्ती मिल जाए, फिर उसको क्या चीज है जो उसके लिए रह जाती है, और कोई के फिर उसको किसी और की क्या जरूरत रह गई। एक और जगह भी है ना, इन इन अल्लाह मौला लदीना आमनु, अन अल्लाह मौला लदीना आमनु, अल्लाह ताला मौला है ईमान वालों का, वह अन अल काफिरीना ला मौला ना हो, और काफिरों का कोई मौला नहीं है। कभी कभी जब इंसान अस्पताल वगैरह जाता है, कई मुसलमान पेशेंट्स को देखता है, तो हमेशा मेरे जहन में ये बात आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह की जात है, हम उसकी तरफ पलटते हैं, उसे मांगते हैं, हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है, अल्लाह ताला है ना हमारे लिए, वो है ना हमारा, फकद इस्तमसक बिल उरवतिल वुथका, आप उसको थामे हुए हैं, उसको जो आपको छोड़े नहीं, छोड़ेगा नहीं, कोई तो है आपके लिए जो ऐसी जात है जिसपे आप उम्मीद करें, भरोसा करें, तो वो आपके भरोसे को तोड़ेगा नहीं। और जो काफिर है, इसके पास तो कोई भी सहारा नहीं, वो किसको पुकारे जिसका ईमान ही नहीं, वो क्या कहता होगा, किससे मांगता होगा। तो जिसने अल्लाह ताला पर ईमान रखा, अल्लाह ताला भी उसका दोस्त बन जाता है, फिर वाकई उस वो तो ऐसा मजबूत कड़ा उसने थाम लिया जिसको टूटना ही नहीं है, वो फिर अपने हर दुख गम में अल्लाह से बात करता है, उसकी तरफ रुजू करता है। तो अल्लाह ताला मौला है, वो दोस्त है, काफरों का तो कोई दोस्त नहीं। तो कितनी बड़ी फजीलत मिल गई, कितनी बड़ी शान है एक ईमान वाले की, इस जर्रे को वो अल्लाह ताला दोस्त बना ले। हाँ, मगर मसला एक है कि ईमान वाले सारे एक दर्जे के नहीं होते। देखे ना, किसी का ईमान ज्यादा है, किसी का कम है, और आज ज्यादा है तो कल को पता नहीं कितना हो, ये कुछ पता नहीं, सबके भी डिफरेंट है, हम सबके ईमान के लेवल डिफरेंट है। लेकिन जिसका ईमान का लेवल आज बहुत ज्यादा है, उसको भी नहीं पता कि कल ज्यादा इससे भी ज्यादा होगा या कम हो जाएगा। जिसका कम है, उसको नहीं पता कि कल इससे भी कम चला जाना है या इससे ज्यादा होगा। जैसे इंसान जब नेकी करता है तहज्जुद के लिए खड़ा हो तो ईमान बढ़ जाता है, जब गुनाह करता है तो ईमान कम हो जाता है। मस्जिद में बैठा होता है ईमान बढ़ता है ना, और आप नाच गाने की महफिल में जाएं, आपको खुद समझ आ जाएगी आपका ईमान कम हो जाता है। रमजान में कैसे हमारे ईमान के लेवल एकदम बढ़ जाते हैं, घर में बैठे होते हैं, बाकी दिनों के अंदर कुछ भी नहीं, बाकी दिनों में कोई भी नहीं ईमान का लेवल उस तरह बड़ा होता, रमजान में कैसा बढ़ जाता है। हज उमरे पे जाते हैं तो कैसे ईमान बढ़ जाता है, और बाकी हज उमरे से वापस आ जाए, कहीं और वेकेशन पे आप चले जाए, कम होता जाता है। तो जितना ज्यादा ईमान का लेवल होगा ना, अल्लाह ताला की दोस्ती भी उतनी ही मिलेगी, उसकी विलायत भी उतनी ही मिलेगी। जब ईमान कमजोर होगा तो अल्लाह ताला की दोस्ती का भी छोटा सा हिस्सा मिलेगा। तो जब अल्लाह ताला की विलायत मिल जाती है तो फिर क्या होता है, युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, तो अल्लाह ताला निकाल लेता है लोगों को अंधेरों से। अंधेरे किसके, गुनाहों के अंधेरे, ख्वाहिशात के अंधेरे, अंधेरे बहुत तरह के हैं, कुफर के भी होते हैं, शिर्क के भी होते हैं, बिदतों के भी होते हैं, जहालत के भी होते हैं, अल्लाह ताला फिर निकाल लेता है। जब दोस्त बन जाता है ना उसका, तो उसको नाफरमानी के अंधेरों से, गुनाहों के अंदर से निकाल लेता है। वो शिर्क पे तो जाहिर नहीं है ये, लेकिन और भी अंधेरे हैं, जहालत का अंधेरा हो सकता है, उससे निकाल लेता है। इलन नूर, नूर की तरफ, और नूर क्या है, हिदायत। और देखें हर जगह पे जुल्मत जो है वो उसका उसकी जमा आई है, जुलुमात, लेकिन नूर एक ही है, नूर वाहिद ही आता है, क्योंकि हक का रास्ता सिर्फ एक है, बाकी सब अंधेरे। जितने अधियान बाकी हैं वो सब अंधेरे, जिस तरफ भी अल्लाह के सिवा कोई बुला रहा है वो सब अंधेरे, लेकिन नूर यानी हक बात, सच बात, वो एक है। रास्ता जन्नत में जाने का सिर्फ एक है, निजात का रास्ता सिर्फ एक है, उसको नूर कहा गया। वल्लदीना कफरू औलिया मुताहूत, जो काफिर है उनके दोस्त तो ताहूत है, वो उनके साथ लगे हुए, उनको वो पसंद आते हैं, वो उनके पीछे चलते हैं। युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलतुलमात, वो उनको नूर में भी कहीं उनको नूर की झलक भी नजर आ जाए तो अल्लाह अकबर वापस उसको अंधेरों में ले जाते हैं। और वैसे भी इंसान फितरत पे पैदा होता है तो नूर तो था ना उसके अंदर, लेकिन ये लोग जो ऐसी कंपनी, ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसा माहौल, वो उसको अंधेरों में घसीट ले जाता है। कई लोग होते हैं कभी इस्लाम की तरफ आने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनके जो इर्द गिर्द वाली तागुती कुव्वतें होती हैं वो उनको फिर अंधेरों में लेके वापस डुबो देती हैं। तुम क्या बन गई, तुम क्या करने लगी, अल्लाह अकबर, उलाए का साबुन नारी हूँ फीहा खालिदून। ये आग वाले आग के साथी हैं, इसमें हमेशा रहने वाले, ये जो ताहूत के औलिया बने। तो इंसान को फैसला करना, उसने अल्लाह ताला का वली बनना है या शैतान का, ताहूत का, क्योंकि वो तो फिर अंधेरों में ही ले जाएंगे। और अल्लाह ताला का वली बनने का कोई तरीका है क्या? आप भी अल्लाह के वली बन सकते हैं या वो कोई और ही मखलूक है जो अल्लाह के वली होते हैं? हम तो बन ही नहीं सकते। नहीं, आप भी बन सकते हैं। अल्लाह ताला के वली बनने का तरीका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया। ये अल्लाह का वली कौन होता है? जो अल्लाह ताला के करीब होता है, उसका कुर्ब पा लेता है, बहुत क्लोज होना। तो दो औसाफ हैं औलिया के, अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, ये कुरान बताता है, ईमान लाए और वो तकवा वाले हैं। तकवा कैसे लेकर आए आप अपने अंदर? लाना चाहते हैं? अगर आप वो लाना चाहते हैं तो फिर तो वायदा है आगे बात करने का, वरना तो क्या, जो सौदा खरीदना ही नहीं तो फिर उस रास्ते जाना भी क्या। अगर जानना चाहते हैं तो हज़रत अली ने बताया तकवा चार चीजों में है। तकवा चार चीजों में है। नंबर वन, अल्लाह का डर दिल में होना। नंबर टू, कुरान और सुन्नत पर अमल करना। नंबर थ्री, अल्लाह ताला ने जो अता किया है उसकी रजा में राजी रहना, चाहे वो थोड़ा है चाहे ज्यादा है, बस उससे राजी रहना, कलील पे भी राजी रहना। और नंबर फोर, आखरत की तैयारी करना। जब ये करने लगेंगे ना तो आप अल्लाह ताला के वली बन जाएंगे। और जब आप वली बन जाएंगे ना तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये शायद अल्लाह ताला के जो औलिया हैं वो तो उसके दोस्त हैं, उनको तो ना कोई खौफ है तो ना कोई गम है। ये है मर्तबा अल्लाह ताला के वली का, क्योंकि उसको कैसे खौफ और गम होगा जिसको अल्लाह ताला दोस्त बना दे, जिसका पुश्त पना अल्लाह ताला खुद हो जाए, जिसका मुहाफिज अल्लाह ताला खुद हो जाए। अल्लाह ताला की दोस्ती तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह अकबर, क्या तिलावत सुनते ही ना आयत की, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक।
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.